नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वृद्धि दर कमजोर रही तो अगले साल कर्ज देने की रफ्तार घट जाएगी। इस समय ऋण वृद्धि काफी बेहतर है। चौधरी ने वित्तीय प्रणाली द्वारा कुछ सावधानी बरतने की भी सलाह दी, क्योंकि आज किए गए फैसलों के चलते 5 से 7 साल कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चौधरी ने यहां बिजनेस टुडे के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अगर जमा वृद्धि जारी नहीं रहती है तो हमारा अनुमान है कि अगले साल ऋण वृद्धि दर कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जमाओं में कुछ सुधार नहीं हुआ तो ऋण वृद्धि घटकर 12 से 13% के आसपास आ जाएगी। गौरतलब है कि इस समय जमाओं में 9% की वृद्धि के मुकाबले ऋण वृद्धि दर लगभग 17% है। चौधरी ने कहा कि अगले 5 से 7 साल भारत के लिए बेहतरीन नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें इस आक्रामकता में बाघ की भूमिका निभानी है और जब कोई मौका कुछ जोखिमों के साथ आता है तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि उनके नेतृत्व में बैंक अपने प्रतिद्वंदी ICICI बैंक को दूसरे स्थान से विस्थापित करना चाहता है और भविष्य में HDFC बैंक से भी आगे निकलने का लक्ष्य है। चौधरी ने 3 साल पहले कार्यभार संभालने के दौरान की गई एक टिप्पणी को याद करते हुए ICICI बैंक का नाम लिया और कहा, मैंने कहा था कि मैं नंबर 3 बने रहने के लिए शामिल नहीं हुआ हूं। मैं एक्सिस बैंक को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए इस संस्थान में शामिल हुआ हूं। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने चेन्नई में एक आवासीय परियोजना के विकास के लिए करीब 100 करोड़ रुपए में 60 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि चेन्नई के ओरगणम जंक्शन इलाके में ये जमीन खरीदी गई है। इस 60 एकड़ के भूखंड पर करीब 16 लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य इलाके का विकास किए जाने की संभावना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी गौरव पांडे ने कहा कि चेन्नई में एक आवासीय परियोजना के विकास के लिए इस भूखंड की खरीद देश के प्रमुख शहरों में विस्तार करने की रणनीति का ही हिस्सा है। हालांकि कंपनी की तरफ से इस सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सौदा करीब 100 करोड़ रुपए का है। गोदरेज समूह की कंपनी का फिलहाल दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में कारोबार है। इंजीनियरिंग एवं निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने हरित अमोनिया परियोजनाओं को विकसित करने के लिए नॉर्वे की H2 करियर H2C के साथ शुरुआती समझौता किया। जल क्षेत्रों में लगने वाली इन परियोजनाओं से उत्पादित हरित अमोनिया का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाएगा, कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा। इस समझौता ज्ञापन के तहत LNT परियोजनाओं को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, स्थापना और परिचालन में H2C के साथ सहयोग करेगी। LNT में पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष ऊर्जा सुब्रमण्यम शर्मा ने कहा, शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए सोच और समाधानों की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में H2 करियर के साथ हमारा संबंध बेहद उपयुक्त है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि वाहन विनिर्माताओं को प्रोटोटाइप चरण से आगे बढ़कर बाजार में पर्यावरण अनुकूल वाहनों की पेशकश शुरू करनी चाहिए। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विकास एवं शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में चल रही वाहन प्रदर्शनी 2023 में पेश किए गए नए वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों तथा प्राकृतिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को देखा और उनके बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैव ईंधन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का वक्त आ गया है। उन्होंने वाहन प्रदर्शनी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि भारत ने 2023 तक 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को अब 2024-25 तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक रूप से जल्द ही कई पंपों पर E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध होगा। मंत्री ने इससे पहले वाहन प्रदर्शनी में एथेनॉल पवेलियन का उद्घाटन किया था, जहां मारुति सुजुकी और टोयोटा क्लॉस्कर मोटर के साथ ही TVS, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, होंडा मोटरसाइकिल, यामाहा और सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपने वाहनों के प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए। ये वाहन 20 से 85% तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन से चल सकते हैं। ऑटो एक्सपो के पहले और दूसरे दिन में 82 नए वाहनों से पर्दा उठा। अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा बोलबाला नजर आया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए पहले से तैयार सामग्री का उपयोग किया जाएगा। ये कदम राजमार्ग निर्माण को वर्तमान के 33 किलोमीटर प्रतिदिन से 100 से 150 किलोमीटर प्रतिदिन तक की गति दे सकता है। सिंह ने कहा, हम वर्तमान में सुनिश्चित करने का लक्ष्य बना रहे हैं कि पुलों की नींव और अन्य चीजों के अलावा हमारे ज्यादातर सामान पूर्व निर्मित हों। अन्य सभी सामान कारखाने में तैयार किया जाएगा, उसके बाद बनी बनाई सामग्रियों को परियोजना स्थल पर भेज दिया जाएगा। इससे परियोजना स्थल पर प्रदूषण कम होगा। मंत्री ने कहा, काम तेजी से हो रहा है और मुझे भरोसा है कि वह दिन दूर नहीं जब हम इन पूर्व निर्मित सामग्रियों के साथ सड़क बनाने में सक्षम होंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।